الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج 16ویں تراویح آدھا رمضان کا یہ مہینہ آدھا گزر چکا ہے اور آج 16ویں تراویح رہی 16واں پارہ بھی آج آپ نے سماعت فرمایا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ کہف کا زیادہ حصہ 15ویں پارے میں ہے اور تھوڑا حصہ 16ویں پارے میں بھی آیا ہوا ہے اور چونکہ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا ذکر بھی کیا ہے کل تھوڑا اس کا حصہ آپ کے سامنے آیا تھا بقیہ حصہ آج آپ نے سنا ہے اسے کل خضر علیہ السلام کے بارے میں بعض ایسی چیزیں جن کا ہمارے عقیدے سے تعلق ہے وہ بنیادی چیزیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی درس میں آج موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں جو بڑا مختصر سا ہے لیکن علم اور تعلیم سے متعلق سیکھنے اور سکھانے سے متعلق بہت سی اس میں عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے بڑوں کے لیے بھی ہے ہر ایک کے لیے کچھ نصیحت کی چیزیں ہیں ہم آج کے درس میں چاہیں گے کہ اس کی طرف اشارہ کریں تاکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہمیشہ رہیں کل میں نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا صحیح بخاری میں جیسا کہ یہ ذکر ہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا میں ہوں اور ایک نبی اپنے دور کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا علم رکھنے والا ہوتا ہے اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہتر جواب یہ تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کون زیادہ جانتا ہے اور کس کو زیادہ علم ہے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا اور اسی وجہ سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ جائیے میرا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام کے پاس انہیں بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ وہاں پر گئے یہاں سے سیکھنے اور سکھانے کی جو باتیں ہیں وہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے آج کا درس خالص اسی پر ہے سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے یہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی اچھی خاصی عمر تھی وہ کم عمر نہیں تھے چھوٹے نہیں تھے بڑی ان کی عمر تھی اس وقت اچھی خاصی عمر تھی اس عمر میں کہا گیا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے خضر کے پاس جو ہے خضر کا نام تو نہیں آیا ہے اس میں لیکن جیسا کہ احادیث میں بات آتی ہے اس کی روشنی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام کے پاس ان کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے وہ وہاں پر گئے जिससे ये बात समझ में आती है कि इल्म हासिल करना, कुछ सीखना, ये किसी उम्र के साथ खास नहीं है। कभी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी तो सीखने की उम्र निकल गई, अब हम क्या सीखेंगे, अब तो बुढ़ापा आ गया। नहीं, चाहे आदमी उम्र के जिस मरहले में भी हो, सीखने की उसकी उम्र रहती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और बाज दिगर अहले इल्म से ये बात आई है कि आदमी इल्म हासिल करता है कब्र में जाने से पहले तक। जो है कभी उसका इल्म हासिल करना खत्म होगा जब उसकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, यानी मौत आ जाएगी। लेकिन मौत से पहले उसका इल्म हासिल करना ये कभी खत्म नहीं होगा। इल्म हासिल करने की कोई खास उम्र नहीं है, आदमी जिस उम्र में भी है उसे इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए उम्र मेरी हो गई, बच्चे सीखते हैं, अब हम क्या सीखें, बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों की सीखने की उम्र होती है। ये सही है कि बच्चों के अंदर याद करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ तक सीखने की बात है आदमी किसी उम्र में भी सीख सकता है। उसके बाद दूसरी बात ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दे दिया गया कि आप जाइए, मेरा एक बंदा है, अल्लाह ताला ने कहा मेरा एक बंदा है उसके पास जाइए और जाकर के वहाँ इल्म हासिल कीजिए, जब उनसे ये कहा गया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं उनके पास जाऊँ, इस उम्र में जाऊँ, मैं अल्लाह का रसूल, बड़े बड़े रसूलों में से एक, वो बड़ा उनका ऊंचा मकाम है मूसा अलैहिस्सलाम का, इसमें कोई शुबा नहीं है, और खजर अलैहिस्सलाम से भी ऊंचा मकाम उनका है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सीखने के लिए गए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक ऐसा इल्म दिया था, उनको ऐसा इल्म दिया था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। और ये होता है दुनिया में, आप इंसानों को देखेंगे तो हर एक का मामला ऐसा होता है कि एक आदमी के पास कुछ इल्म है, दूसरे के पास वो इल्म नहीं है, दूसरा इल्म होगा लेकिन ये इल्म नहीं है, उसके पास अलग इल्म है जो इसके पास नहीं है, किसी इंसान के पास पूरा इल्म नहीं है कि सारा इल्म उसी को दे दिया गया हो, और कोई इंसान ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कुछ इल्म ही ना हो। हर एक के पास अलग अलग फील्ड के लिहाज से इल्म होता है। यही अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सबक दिया कि जाओ उनके पास इल्म है, मैंने उनको कुछ ऐसा इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, जाओ उनके पास जाकर के सीखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा, उनको ये ख्याल नहीं आया, वो तो नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबक की बात है मैं उसे याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके पास क्यों जाऊँ, मेरे पास तो पहले ही इतना इल्म है, मैं उनसे बड़ा हूँ, मर्तबे में मैं उनसे ऊँचा हूँ, मैं उनके पास क्यों जाऊँ इल्म हासिल करने के लिए। नहीं, इल्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर किसी भी शख्स के पास इल्म है जो हमारे पास नहीं है तो उससे जाकर के सीखने में कोई शर्म कोई आर नहीं होना चाहिए कि मैं उसके पास क्यों जाऊं, उससे क्यों पढ़ूं। अगर उसके पास इल्म है, अल्लाह ने उसको दिया है वो इल्म, हमारे पास उसके मुकाबले में बड़ा इल्म होगा, दूसरा इल्म होगा जो बहुत ऊंचे दर्जे का होगा, ठीक है पूरा, लेकिन ये इल्म उसके पास है, अगर मुझे सीखना है तो उसके पास जा करके जो सीखने का तरीका है उसी लिहाज से सीखना चाहिए, शागिर्द बन करके सीखना चाहिए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। मूसा अलैहिस्सलाम गए शागिर्द बन करके, स्टूडेंट बन करके हज़रत अलैहिस्सलाम के पास सीखने के लिए तैयार हुए। तीसरी बात जो हमें मालूम होती है उससे, जो हम सब के लिए नसीहत की बात हुई है, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये भी दरियाफ्त कर लिया, सवाल कर लिया, उनके पास जो वही आती थी तो उन्होंने सवाल किया कि अलामत क्या होगी, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये बंदा है जिससे मुझे इल्म हासिल करना है, क्योंकि वो जानते तो नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये वही की मछली लेकर के जाएंगे, जहाँ ये मछली पानी में चली जाए वो समझो वहीं पर वो आदमी आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको इल्म हासिल करना। लंबा सफर तय करके मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तक गए, और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक से जो बात नकल की है वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि लन अब्रहा हत्ता अबलुग मजमा अल-बहरैन अव अम्दी उक्बा, कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बिल्कुल लगा रहूंगा जब तक कि मैं वो जगह जिसको बताया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि वहां वो बंदा मिलेगा, कहा कि जब तक मैं वहां पहुंच न जाऊं, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कितनी भी मेरी उम्र चली जाए, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं। वो शौक दिखाया उन्होंने, यही शौक हर पढ़ने वाले के अंदर होना चाहिए। मैंने आपसे कहा बच्चों के लिए भी बड़ी नसीहत है, इसमें हम उस पहलू को भी यहाँ जिक्र करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इल्म हासिल करने के लिए ये बड़ी अहम चीज है कि पहले इल्म सीखने के लिए शौक होना चाहिए। जब तक ये शौक नहीं होता है, खुद से पढ़ना न चाहे, कोई आदमी कितना भी डांटे, कितना भी मारे, कितना भी पीछे पड़ा रहे, नहीं, जब तक दिल से शौक से आदमी इल्म सीखने की कोशिश नहीं करता है, उसको सही इल्म नहीं आता। बाद मरतबा लोग ये शिकायत करते रहते हैं, बच्चा पढ़ता है, बड़ी जो है कोशिश कर रहे हैं, उस्ताद भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा तो हमेशा स्कूल जाता है या मदरसे में पढ़ता है तो मदरसे में जा रहा है, वहीं रहता है, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नज़र नहीं आता, कुछ जो है तालीमी तरक्की वो हमें नज़र नहीं आती, बच्चे कितना सीखा कुछ नज़र नहीं आता। कभी इसकी वजह क्या हो जाती है कि बच्चे के अंदर खुद शौक नहीं होता है, और जब तक ये शौक नहीं होगा तब तक वो सही तरीके से इल्म नहीं हासिल कर सकता। इसलिए बजाय उसे मारने के, डांटने के, पीछे पड़ने के, पहले उसके दिल में, उसके ताल्लुक से शौक पैदा करना चाहिए। यही शौक मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर हमें नजर आता है पूरे किस्से में, यानी जो अल्फाज जिक्र किए गए वो ऐसे ही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, हासिल करना ही है, चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए, मुझे हर परेशानी मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मुझे यह इल्म हासिल करना ही है। यही सलफ का भी तरीका था। आप पढ़ेंगे सलफ के बारे में तो लोगों ने पता नहीं कितनी कितने दूर के सफर किए हैं और इतनी परेशानियां उठाई हैं कि बाल मरतबा खाने के लिए कुछ नहीं होता तो दरख्त के पत्ते भी चबाए हैं, लेकिन शौक था कि हमें हासिल करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तो हम सुनते रहते हैं कितना ऊंचा मकाम है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने हासिल कैसे किया इसे। उनके बारे में भी ये बात आती है कि कभी सफर में ऐसा भी हुआ कि कई कई दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो दरख्त के पत्ते भी चबा करते रहे, लेकिन हमें हासिल करना है। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, आज हम लोग बहुत सारी, एक रोशनी से हमारा काम नहीं चलता तो हम दसियों भी जला लेते हैं, लेकिन रोशनी का इंतजाम नहीं होता तो चांदनी रात में जब चांद रोशनी भी गिरता है तो उसमें बैठ करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जो उस रोशनी में, चांद की उस रोशनी में बड़ी मेहनत की है लोगों ने, बड़ी जो है मशक्कत उठाई है। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि शौक था कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। जब ये शौक पैदा होता है बच्चों में तो बच्चे भी वाकई जब अपने शौक से पढ़ते हैं तो बात कुछ और होती है, वाकई वो बहुत सीखते हैं और आगे चल करके भी उनके लिए वो उसमें बहुत फायदा होता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनके अंदर शौक पैदा किया जाए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने साथ एक नौजवान को भी लेकर के जाते हैं, लेकिन सीखना किसे है? मूसा अलैहिस्सलाम को सीखना है। उस पूरे किस्से में उस नौजवान का जिक्र सिर्फ साथ जाने की हद तक है, लेकिन जहां खजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है, सही बुखारी में जिक्र जो मुलाकात होती है वहां जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जो है सलाम करते हैं, तो जो मुलाकात होती है उसके बाद से उनका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि असल इल्म हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, उन्हीं को भेजा गया था। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं वहां पर जिस जगह को बताया गया था, उस जगह को पहुंचने से पहले उन्हें किसी तरह की भी थकान का एहसास नहीं हुआ। मैं थक गया हूं, जरा आराम कर लेंगे, किसी तरह की थकान का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब उस जगह पे पहुंच गए हैं जो असल जगह थी जहां हजरत अलैहिस्सलाम मिलने वाले थे, तो जैसा कुरान में जिक्र किया गया है कि वहां जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और वहीं पर मछली निकल करके अंदर चली भी गई थी। उन्होंने वहां पर कहा अपने उस नौजवान साथी से जो साथ में गए हुए थे कि आतिना गदाना लकन लकीना मिन सफरिना हाजा नसबा, आतिना गदाना लकद लकीना मिन सफरिना हाजा नसबा, कि भाई हमारा नाश्ता लाओ, खाना जो भी है लाओ, खा लेते हैं, इस सफर में हमें बड़ी थकावट हो गई है। लोगों ने लिखा उसके बारे में कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तक अपनी जगह पर नहीं पहुंच गए जहां इल्म हासिल करने के लिए उनको जाना था, तब तक उन्हें थकावट का कोई एहसास नहीं हुआ। ये एक शौक होता है, ये जज्बा होता है। जब तक आदमी के सामने कोई एक टारगेट होता है, उस टारगेट को हासिल नहीं कर लेता, तब तक उसे थकावट का एहसास नहीं होता। जब शौक होता है तो थकावट का एहसास नहीं होता। वहां जाकर के उन्हें एहसास हुआ, और वहीं पर जब उनके दादी ने कहा कि भाई मछली तो चले गई, कहा तो हम तो इसी के लिए आए ही थे, चलो अच्छा हुआ हमें वो जगह मिल गई, और फिर वहीं खजर अलैहिस्सलाम से जो है मुलाकात हो जाती। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उनसे बात करते हैं, उन चीजें बच्चों को भी पढ़ने वालों को भी सिखानी चाहिए कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने कैसे बात करता है। आज क्लासरूम का माहौल बहुत बदल गया है, बच्चे अपने उस्ताद का वो एहतराम नहीं करते, मजाक भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। वो आप लोग भी जानते हैं कि क्लासरूम में किस किस अंदाज की शरारतें हो जाती हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो काफी उम्र थी उनकी, उसको बड़ी उम्र के थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब खजर अलैहिस्सलाम से बात करते हैं तो कहते हैं कि हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। बहुत मुख्तसर सी बात है, लेकिन इतने ही टुकड़े में एक शागिर्द को कैसे होना चाहिए और इल्म हासिल करने के लिए ये चीजें कितनी जरूरी हैं, उसमें से पांच अहम चीजें उसके अंदर जिक्र की गई। पहली बात ये कि उन्होंने ये कहा कि हल अत्तबिउका, अरबी में इत्तबा कहते हैं किसी को फॉलो करना, पीछे पीछे चलना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी में इस तरह से कबूल कर लेंगे कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके नक्शे कदम पर चलूंगा, आपसे आगे नहीं। ये अदब, मैं एक शागिर्द बन करके आपसे सीखूंगा। जो शागिर्द अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता है, नक्शे कदम पर चलने का मतलब यही होता है उसे फॉलो करते हुए वो चलता है, उसके पीछे पीछे चलता है। यही बात मूसा अलैहिस्सलाम ने खजर से कही, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह तबारक व तआला, कितना तवाज़ो था उसमें। हालांकि मैंने शुरू में आपसे ये बात कह दी, मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम उनसे ऊंचा है, ये उन पांच रसूलों में से एक है जिनको उल अज़्म रसूल कहा जाता है। लेकिन फिर भी अब वहां शागिर्द हैं, तो शागिर्दों वाला अंदाज उन्होंने अपनाया कि मैं आपके पीछे पीछे रहूंगा। दूसरी बात ये उन्होंने कहा अला अंतु अल्लिमनी, कि आप मुझे सिखाएं। ये नहीं कहा कि आपके साथ रह करके चलो थोड़ा बहुत मैं कुछ सीख लूंगा, ये नहीं, कुछ मैं भी जान जाऊंगा, आपकी संगत मिल जाएगी तो आपके साथ में रहने की वजह से मुझे ये फायदा हो जाएगा, नहीं नहीं कहा कि आप मुझे सिखाएं। ये तलब पाई जाती है उनकी तरफ से कि आप मुझे सिखाएं, इसके लिए मैं आपके पीछे पीछे रहना चाहता हूं, आप मुझे सिखाएं, यानी ये एतराब कि मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, आप मेरे उस्ताद होंगे, मेरे उस्ताद के दर्जे पर आप फायज रहेंगे। ये दूसरी बात उसी में है। तीसरी बात ये है कि मिम्मा उल्लिम दरुश्ता, आप मुझे सिखाएं उन चीजों में से, अरबी में ये लफ्ज आया मिम्मा उल्लिम, ये मीन अरबी जबान में उसके कई माने होते हैं, उसमें से एक कहते हैं तबीज के लिए आते हैं, तबीज का मतलब बास, तो उसका माना किया जाएगा कि वो बास उनमें से बास चीजें जो आपको सिखाई गई है, थोड़ा इल्म मुझे भी आप सिखा दें। ये नहीं कहा कि जो आपके पास है वो आप मुझे सिखा दें, नहीं, आपके पास तो बहुत कुछ है, एक शागिर्द के कहने का ये अंदाज होना चाहिए, ये तवाज़ो, ये इनके सारी, कि आपको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बड़ा इल्म है आपके पास, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अगर आप सिखा दें मुझे तो मैं आपके साथ रह करके वो थोड़ा सा मैं भी सीखना चाहता हूँ। बड़ी तवाज़ों के साथ दरख्वास्त करते हैं, ये एप्लीकेशन है उनकी तरफ से हज़रत अलैहिस्सलाम के सामने। ये तीसरी बात थी, उन्होंने कहा मिम्मा, ये नहीं कहा माँ, असल में अरबी में मिन छोड़ देंगे, माँ कहेंगे माँ उल्लिमता तब भी ये है, लेकिन उसके अंदर माना ये होगा कि जो भी आपके पास इल्म है वो आप मुझे भी सिखा दीजिए, लेकिन ये जो मिम्मा कहा गया तो उसके अंदर ये माना होता है कि आपके पास जो इल्म है थोड़ा मुझे भी सिखा दीजिए। उसके बाद उसी में चौथी बात जो ये है कि उल्लिमता, कहा गया उल्लिमता, ये नहीं कहा मिम्मा तालम, अरबी में दोनों में फर्क ये है कि जो आप जानते हैं उसमें से सिखाइए, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जो आपको सिखाया गया, और लिम्ते का माना उर्दू में आपको सिखाया गया, यानी साथ में ये भी जिक्र कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि दुनिया का कोई भी उस्ताद जो सीखा है वो अल्लाह की तौफीक से ही वो भी सीखता है। कोई भी शख्स, कोई भी अल्लाह का बंदा ये ना समझे मैंने जो कुछ हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया, बहुत से लोग ऐसे बोल जाते हैं मैंने बड़ी मेहनत की अपने मेहनत से हासिल किया, ये गलत तरीका है अकीदे के लिहाज से, सही तरीका यही है कि कहा जाए कि ये अल्लाह की तौफीक से मिला है, अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मुझे ये चीज हासिल हुई है। इससे कभी गुरूर नहीं आता है, घमंड नहीं आता है, और वही सही तरीका है, वही बात कही मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़िर से कि जो आपको सिखाया गया है, जो आपको सिखाया गया है, जो आपको सिखाया गया है उसमें से मुझे भी आप सिखा दीजिए, ये नहीं कहा जो आप जानते हैं उसमें से सिखा दीजिए। फायदा इसका ये है कि पहली बात ये है कि अल्लाह की तौफीक से ये चीजें मिलती हैं, इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं हासिल कर पाता है, और दूसरी बात ये कि ये सीखने और सिखाने का जो सिलसिला चल रहा है आपको भी किसी ने सिखाया है तो आपके पास इल्म आया। अगर हर सीखने वाला इल्म को अपने पास ही रख ले, किसी और को न सिखाए, तो फिर ये सीखने और सिखाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। आपको किसी ने सिखाया, आज आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मुझे सिखाइए, उससे ये फायदा भी हासिल होता है। अल्लाह की तौफीक से ये चीज हासिल होती है। और मैंने आपको कहा कि किसी ने आपको सिखाया है, ऐसे ही आप भी दोस्तों को सिखाइए। इसमें सिखाने की भी, सिखाने का भी एक शौक पैदा होता है कि हमारे पास जो इल्म है उसे गठरी में बांध करके रखने के बजाय दोस्तों को सिखाना चाहिए। आखिरी बात रुशदा जो उसमें कहा गया है, रुशदा कहते हैं हिदायत को, सीधा रास्ता। वरना सीखने और सिखाने में तो लोग, बाज लोग ऐसा भी होता है कि गलत चीजें सिखा देते हैं, तो गलत चीज नहीं, सही बात, सही चीज, सही इल्म। जो आपके पास सही इल्म है, आपको सिखाया गया है, उसमें से आप थोड़ा मुझे भी सिखा दीजिए। देखिए कितना जो है अदब है, कितना तवादो है, कितना ऊंचा मकाम रखने वाला एक नबी, एक रसूल कितनी तवाज़ो के साथ दरख्वास्त करता है। जो हज़रत अलैहिस्सलाम ने भी तय कर लिया कि ठीक है हम आपको सिखाएंगे, उन्होंने जो है चीज़ें सिखाई भी। पहला सबक उन्होंने यही सिखाया था मूसा अलैहिस्सलाम को कि हमारे पास जितना भी इल्म आ जाए, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इसकी मिसाल यूं समझो कि एक गौरैया एक छोटा सा परिंदा समंदर में चोंच मारे, उसके चोंच में कितना पानी आता है। अल्लाह का इल्म वो समंदर है, और हमको जो इल्म अल्लाह ताला की तौफीक से आता है, मिलता है, वो सिर्फ पानी का एक कतरा है जो किसी गौरैया के किसी भी परिंदे की चोंच में आ जाता है। ये इल्म, ये अदब ऐसी चीज है कि ये हर शख्स को सिखाना चाहिए पहले, वरना लोगों को इल्म का ऐसा गुरूर होता है, ऐसा घमंड होता है कि आप सोच नहीं सकते, अपने सामने सबको समझते हैं कुछ नहीं है। अगर ये चीज पैदा हो जाए कि हमारे पास इतना सब होने के बावजूद भी इतना हमने सीखा लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, अभी ये सिफर के दर्जे में इल्म है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, हासिल करना चाहिए, वहां से इल्म हासिल करने का जज्बा भी बाकी रहता है। उसके बाद और भी वो पूरा जो है किस्सा, पूरी चीजें हुई, लेकिन जिस टुकड़े में खास तरीके से इल्म के ताल्लुक से और इल्म को सीखने के ताल्लुक से जो तवाज़ो और इंकसारी की बात थी, सीखने और सिखाने का जो मामला था, उसकी चंद पॉइंट, उसके जो चंद पॉइंट थे मैंने आपके सामने जिक्र किए। पूरा किस्सा हमने आपसे पहले भी कहा था कि जिक्र करना हमारा मकसूद नहीं होता, असल कहाँ इबरत और नसीहत की बातें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। इसी पर आज का दर्स हम खत्म करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।